नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जेत् मुदीरे नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया। भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। नमः ब्राह्मणे देवाय गोब्राह्मणे हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्या जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवतम स्कंद 6 अध्याय 1 श्लोक नंबर 10। कुचित निवर्तते अभद्रा कुचित चरति तत्पुनः प्रायश्चितं मथो पार्थम् मन्ये कुञ्जर शौचवत्। कोचित कभी कभी निवर्तते बंद कर देता है अभद्रात पाप कर्म से। कोचित कभी चरति करता है तत् वह पाप कर्म पुनः फिर प्रायश्चितम प्रायश्चित की विधि अथो इसलिए अपार्थम व्यर्थ मन्ने मानता हूँ कुंजर शौचवत हाथी के स्थान की ही तरह। अनुवाद और तात्पर्य अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की। कभी कभी ऐसा व्यक्ति जो पाप कर्म न करने के प्रति अत्यधिक सतर्क रहता है पुनः पाप कर पापमय जीवन के फेर में आ जाता है। इसलिए मैं बारंबार पाप करने तथा प्रायश्चित करने का इस विधि को निरर्थक मानता हूं। यह तो हाथी के स्नान करने जैसा है, क्योंकि हाथी पुनः स्नान करने पूर्ण स्नान करके अपने को स्वच्छ बनाता है, किंतु स्थल पर वापस आते ही अपने सिर तथा शरीर पर धूल डाल देता है। तात्पर्य, जब परीक्षित महाराज ने पूछा कि मनुष्य किस तरह पाप कर्म से अपने को मुक्त कर सकता है जिससे उसे मृत्यु के बाद नरक लोक में जाने के लिए बाध्य न होना पड़े, तो सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया कि पापमय जीवन के निराकरण की विधि तो प्रायश्चित है। इस तरह से सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के बुद्धि की परीक्षा ली और परीक्षित इस विधि को प्रामाणिक मानने से इनकार करके उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। अब परीक्षित महाराज अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी से दूसरे उत्तर की अपेक्षा कर रहे हैं। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं नृप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरुश्रितपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजतं सगण रघुनाथानीतं तं सजीवम् साद्वैतम सवदूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदन सहगना ललिता श्री विशाखानीतांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितान पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। प्रातःकालीन सत्संग में आप सभी को कृष्ण मिलन का मंदिर का ओर से हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप लोग को ये शीर्षक ये तो षष्ठा स्कंद जो है अभी चालू हुआ है, लेकिन आप लोग को बहुत कथा में तो अजामिल का बारे में कितना बार सुना होगा, हे जी होली ने राधा गोविंद महाराज का मुख निष्ठ वाणी कभी कभी प्रभु जी लोग भी धाम पे करते हैं। तब ये जो श्लोक है आज का, ये श्लोक में हाथी स्नान का बारे में बताया, मतलब पाप करना फिर प्रायश्चित करना, पाप करना फिर प्रायश्चित करना। हमारा स्थिति यही है, हमें जो 84 लाख जोनी में आते हैं, थोड़ा बहुत पुण्य करने के बाद स्वर्ग लोग जाते हैं, फिर पुण्य खत्म होते हैं, फिर मर्त्य लोग आते हैं, फिर ज्यादा पाप करते थे नीचे चला जाते हैं। इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं 14:18 श्लोक में, किसको मालूम है, किसको याद है ये श्लोक? नहीं, 3 लोक का बारे में सभी को मालूम होता है, स्वर्गलोक मर्त्यलोक और क्या है पाताल लोक। ज्यादा से ज्यादा बाहर का लोक को यही 3 लोक का बारे में जानकारी होता है, उनको मालूम नहीं होता है 14 लोक होता है। ब्रह्मा जी जब गर्भदशाई विष्णु का नाभि कमल से निकले, जो कमल का फूल का ऊपर ब्रह्मा जी बैठे, तब ब्रह्मा जी जहाँ बैठे और यह नाभि, इसका अंदर 14 लोक रह गया। कमल का नाड़ी का अंदर, तब कहने का अर्थ है हम लोग को ऊपर जाते हैं, कभी मर्त्य लोग आते हैं, फिर पाताल लोग को जाते हैं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्यम तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुणवृत्तिष्ठा अधगच्छन्ति तामसा। सतगुणी में रहने वाले स्वर्गलोक जाते हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था। जब तक व्यक्ति सत्वगुणी नहीं बनेगा, सत्वगुणी खाद्य नहीं खाएगा, सत्वगुणी में कर्म नहीं करेगा, सत वचन नहीं बोलेगा, तब तक स्वर्गलोक भी नहीं जा सकता है। कोई किसको बोलने से स्वर्गलोक नहीं जाता है, कर्म का अनुसार स्वर्ग जाता है, पाताल जाता है, मर्त्यलोक में भी रहता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा। सत्वगुणी ज्यादा होने का बाद स्वर्गलोक जाता है, और मर्त्यलोक कब आता है? वो पुण्य खत्म होने के बाद मर्त्यलोक आता है, लेकिन यहां पे मर्त्यलोक में रजोगुणी लोक रहते हैं। मध्यम तिष्ठन्ति राजसा, कभी कभी इसलिए यहां पे हस्ती स्नान करना तुल्य क्यों दिया गया? ये मर्त्यलोक में कुछ पाप करता है, कुछ पुण्य करता है, कभी पाप करता है, कभी प्रायश्चित करता है, इसीलिए ये धरती बना गया। और अध गच्छन्ति तामसा, और ज्यादा पाप करता है तो पाताल, मतलब नरक लोक जाता है। आप नरक लोक का बारे में आप लोग सुन चुके हैं, श्रीमद् भागवत के 5 स्कंद की 26 अध्याय में संपूर्ण नरक के वर्णन है। हो सकता है आपका मन में प्रश्न आएगा नरक कितना है, इतना क्यों नरक भगवान बनाया? नरक एक ही है, नाम नरक एक ही है, लेकिन इसमें कैटेगरी होता है। आप लोग सुन चुके हैं इसी श्लोक का पहले, 1-2 श्लोक का पहले सुन चुके हैं, जितना पाप करोगे इसी प्रकार उसको सजा मिलता है। और ये नरक का साथ श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, भौतिक जगत में मर्त्य जगत में जेल, जेल का अंदर उसी प्रकार जेल को नरक के साथ तुलना किया गया, और जेल का अंदर कैटेगरी अनुसार उसको दंड मिलता है। समझो कोई किसको मर्डर करता है, उसको कितना दफा लगाना पड़ता है? और कितने साल तक उसको सजा भोगना पड़ता है। कोई जमीन हड़पता है उसी प्रकार कैटेगरी के अनुसार उसको सजा मिलता है। नरक 144 नरक है, 144 नरक है, 28 नरक भागवत में दिया गया। सिर्फ ऐसा नहीं कि भागवत में सब कुछ दिया गया है सारा। जिस प्रकार आप वृंदावन में रहते हैं सभी को मालूम होता है 12 वन, लेकिन 12 वन का साथ एक एक वन के साथ दो उपवन होता है, इसलिए ये जो वृंदावन है, ये जो ब्रज मंडल है, इसमें 24 उपवन है। उसी प्रकार नरक का एक उपवन होता है, उपनरक होता है, एक ही नरक का चार चार उपनरक होता है। गरुड़ पुराण में लिखा गया, हमारा भागवत में 28 नरक है, गरुड़ पुराण में दिया गया 36 नरक है, 36 × 4 इक्वल टू जितना हुआ 144 नरक है। लेकिन पाप दो प्रकार के होते हैं, एक ही अज्ञानवशत पाप और ज्ञानवशत पाप। अज्ञानवशत पाप के लिए प्रायश्चित इतना करना नहीं पड़ता है। अज्ञानवशत पाप, फॉर एग्जाम्पल, बाई चांस आप कुछ भी गलती से अज्ञानवशत कुछ गलती कर दिया, इसके लिए प्रायश्चित किया है। आप जो गलती किया वो चीज को दूसरा का पास आप जब बताओगे तब इमीडिएटली वो खत्म हो जाता है। ये हो गया आपके लिए प्रायश्चित अज्ञानवशत। और जो जानबूझकर करता है पाप, जानता है करता है, वो पाप क्या होता है, वो लेयर पड़ता है। लेयर समझते, लेयर हो जाता है परत। और पाप का चार खंभा होता है और पुण्य का भी चार खंभा है। श्रीमद् भागवत में वर्णन है ना, चार खंभा पाप का, चार खंभा कौन बताएगा, चार खंभा है पाप का। जो चार नियम हमारा है वो चार पाप का खंभा है। दिवतम पानम स्त्रियो सोना जत्र अधर्म चतुर्विधा, ये चार अधर्म है, ये चार पाप का खंभा है। और पुण्य का चार खंभा है, पुण्य इसलिए घट जाता है, ये चार खंभा का अंदर रहता है। ये चार खंभा का अंदर मतलब चार पाप करता है इसलिए पुण्य घट जाता है। इसी प्रकार द्यूतम पानम स्त्री सोना, द्यूत मतलब क्या है, द्यूत क्रीड़ा, जब तो मतलब जुआ करना। जुआ करने से क्या नष्ट हो जाता है, जुआ करने से क्या नष्ट हो जाता है, तपस्या नष्ट हो जाता है। पान नशा चीज खाने से, नशा चीज ग्रहण करने से क्या नष्ट हो जाता है, नशा करने से क्या नष्ट होता है, तप तपस्या, नशा से तपस्या नष्ट हो जाता है। द्वितम पानम स्त्रीय, पर स्त्री गमन से शुद्धता नष्ट हो जाता है। और मांसाहार करने से दया नष्ट होता है। देखिए पुण्य का चार खंभा है, पाप का चार खंभा है, चार खंभा इसलिए घट जाता है। द्वितम पानम स्त्रीय सोना, ये चार पाप का खंभा हो गया और पुण्य का खंभा हो गया, सत्य दया तप शौच, ये चार पुण्य का खंभा है। आज के टाइम पे कितने लोग को सत्य बोल रहा है, ये कलयुग है। सत्य युग में 1% भी झूठ ढूंढो के नहीं मिलता था, अभी कलयुग में 1% सत्य बोलना भी मुश्किल पड़ गया आज के टाइम पे। इसलिए कलयुग का लक्षण में कहते हैं, जित सत्य बोलोगे तो शत्रु बनेगा, मिथ्या बोलोगे तो मित्र बनेगा। जितना मिथ्या बोल के आप मित्र बना सकते हैं, और सत्य बोल दिया बस गर्दन उड़ जाएगा। और प्रायश्चित का अर्थ क्या है, पाप को प्रक्षालन करना को ही प्रायश्चित कहा जाता है। धुलाना है पाप को, सफाई करना है। आपका मन में कभी कभी प्रश्न आता है, क्या हम पाप किया क्या, मालूम नहीं हमको हमें पाप किया कि नहीं किया। लेकिन भक्त बनने का नाते भक्ति लाइन में आने का बाद है, भक्त कभी पाप नहीं करता है, और बाई चांस पाप किया वो पुण्य में आ जाता है, ये भी भागवत में लिखा गया। बाई चांस पाप कर लिया, भगवान इमीडिएटली तत्क्षण उसको घटा देता है, इमीडिएटली। संसार का लोक के लिए ये भागवत में दादा है, संसार का लोक के लिए प्रायश्चित करना अनिवार्य है, संसार का लोक के लिए अनिवार्य है प्रायश्चित करना, जब तक उनका प्रायश्चित नहीं। अब भाई चंद्र आप भक्त बन गए, भगवान का नाम जपा, नाम जपने मात्र से, नाम करने मात्र से, बहुत सारे भूरी भूरी प्रमाण दिया गया, चैतन्य चरितम तो देखिए, चैतन्य भागवत देखिए, श्रीमद भगवत गीता देखिए, और भागवत महापुराण में देखिए। भक्त तब बनता है, भक्ति लाइन में तब आता है, और उस शास्त्रपति रुचि तब होता है। शास्त्रपति कब रुचि होता है? जो करोड़ों जन्म का पुण्य को इकट्ठा करता है तब जाके व्यक्ति शास्त्र का प्रति रुचि होता है। करोड़ों जन्म का पुण्य इकट्ठा करने का बाद, और भक्ति में जो आते हैं, भगवान का भजन जो कर रहा है, भगवान भगवद गीता में कहते हैं ना, जैसा मत अंतर्गत पाप में जनना पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन ते माम दृढ़वत्ता, तब जाके व्यक्ति भक्ति लाइन में आता है। अंत हो चुका है, जैसा मत अंतर्गत पापम, पाप संपूर्ण खत्म हो चुका है। अभी नॉर्मल आपको बता रहा हूं, कभी कभी आप लोग प्रचार में जाते हैं, प्रचार में जाते हैं, जब आप माला के बारे में बताते हैं कि किताब देने के लिए बोलते हैं, तो लोग लेते हैं, पहला लेते हैं, कोई मुंह को मोड़कर चला जाएगा। इसलिए कहते हैं पाप करने के लिए कोई प्लान नहीं बनता बनाता है, लेकिन पुण्य करने के लिए प्लान बनाना पड़ता है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति पाप करने के लिए कोई भी पीछे नहीं मुड़ेगा, चला जाएगा, और कभी पाप करने के लिए पूछेगा नहीं, कभी पूछेगा नहीं, लेकिन पुण्य करने के लिए, मंदिर जाने के लिए, भागवत सुनने के लिए, गीता पढ़ने के लिए, भगवान का नाम जपने के लिए पूछताछ करता है, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं। और पाप करने में सब कैटेगरी है, इसका ऊपर बताते हैं पाप का प्रायश्चित कैसा करें। धर्म का 100% पालन करें, श्रद्धा और धैर्य के साथ बड़े से बड़े पाप भी नष्ट किया जा सकता है। धर्म आचरण करना हमारे व्यक्तित्व है, आयु को तथा अन्य कुछ घटना पर निर्भर करता है। धर्म वह है जिससे 3 उद्देश्य साध्य होती है। पहले समाज व्यवस्था उत्तम बनना चाहिए, समाज का उत्तम व्यवस्था होना चाहिए धर्म करने के लिए। दूसरा, प्रत्येक प्राणी मात्र भी व्यवहारिक उन्नति साध्य करना चाहिए। तीसरा, आध्यात्मिक स्तर पर भी प्रगति साध्य करना है, आध्यात्मिक प्रगति के लिए। इसलिए जब हमें भगवान के सामने आते हैं, एक ही प्रार्थना प्रत्येक दिन प्रार्थना करना चाहिए, प्रत्येक दिन एक ही प्रार्थना करना चाहिए। सभी लोग को ये श्लोक मालूम होगा नहीं होगा, ये श्लोक लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवान के सामने प्रत्येक दिन ये प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना करने का श्लोक है। पाप अहम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राय माम पुण्डरीकाख्य सर्व पाप हर हरि। संपूर्ण पाप को नष्ट करने का अधिकार प्रभु का हाथ में, पुण्डरीकाख्य सर्व पाप हर हरि, संपूर्ण पाप को नष्ट कर देता है। हमें पाप अहम, मैं पापी हूं, बहुत बड़ा पापी हूं, अपने को ये मानना चाहिए, मैं भगवान के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहिए, मैं बहुत बड़ा पापी, पाप हम पाप कर्मा हम, और मेरा कर्म जो है वो भी पाप है, मैं जितना सब कर्म किया वो पाप है। पाप आत्मा, और ये जो जीवात्मा है ये पाप करने का वजह से ये मरते लोग जन्म लिया ना, इसलिए कहते पाप आत्मा और पाप संभव, मैं संपूर्ण पाप करके आया हूं, इसीलिए त्राहिमाम मेरे को त्राण कर दीजिएगा, मेरा को उद्धार कर दीजिएगा। त्राहिमाम पुण्डरीकाख्य सर्व पाप हर हरि, प्रभु आप मेरा संपूर्ण पाप को नष्ट कर दीजिएगा। जब भगवान का शरण पे आते हैं तो भगवद गीता का 18 chapter 66 नंबर श्लोक को याद रख लेना चाहिए। जो भगवान का शरण पे आ जाता है, भगवान स्वयं कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षे शमी माशुच, मैं संपूर्ण आपका पाप को नष्ट कर सकता हूं, लेकिन जब आप मेरा शरण पे आते हैं भक्त के लिए प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं। भगवदगीता का 18 चैप्टर 66 नंबर श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरण। भगवान कहते हैं एकम, दो नहीं बोले, तीन नहीं बोले, चार नहीं बोले, कितना बोले? एकम, माम एकम। भगवान बता रहे मेरा शरण पे आओ, अहम तो मैंने संपूर्ण पाप को नष्ट कर सकता। फिर उसका पिछले श्लोक में भगवान संकल्प लेते हैं, संकल्प श्लोक है, भगवान एक ही श्लोक में संकल्प लिए। हमें तो अपना संकल्प को तोड़ देते हैं, हमें अपना संकल्प तोड़ देते हैं। जिस प्रकार ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी को कभी भी काय मन और वाक्यों द्वारा भी मैथुन का चिंतन नहीं करना, इसलिए कहते हैं ये प्रभुपाद ध्यान योग जो गीता है, गीता में एक ही श्लोक में इसको वर्णन करते हैं, कर्मणा मनसा वाचा सर्व अवस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्याग ब्रह्मचर्य प्रचक्षते। और जब भी पाप होता है ये तीन चीज से ही होता है, काय द्वारा मतलब शरीर द्वारा, मानसिक स्तर पर, और किस में होता है? वचन द्वारा। ये तीन से ही पाप होता है, ये तीन से ही प्रायश्चित किया जाएगा, ये तीन चीजें ही प्रायश्चित किया जाएगा। तब फिर आगे चलते हैं, पाप का प्रायश्चित कैसा होता है? पाप का प्रायश्चित का अर्थ है हमसे हुई पाप के लिए अथवा अनुचित कर्म के लिए पश्चाताप होना और संचित पाप को नष्ट करने के लिए उचित दंड लेना। पाप का प्रायश्चित लेने के लिए तपस्या और दृढ़ निश्चय ही आवश्यकता होती है, दृढ़ता के साथ तपस्या करना पड़ता है। जिस प्रकार आप वृंदावन में रह रहे हैं, वृंदावन में रहना मतलब एक ही प्रकार की तपस्या है, सिर्फ रहना मतलब एक ही प्रकार की तपस्या है। दूसरा, फिर पाप का प्रायश्चित लेने के कुछ लाभ। प्रायश्चित लेने से मनुष्य के मन में अनुचित कर्म करने के कारण जो अपराध वह उत्पन्न होता है वह नष्ट हो जाता है, प्रायश्चित करने मात्र से। पाप का प्रायश्चित लेने से व्यक्ति पाप के परिणाम से मुक्त हो जाता है, जिससे पाप अगले जन्म में नहीं भुगतने पड़ते हैं। इससे मनुष्य की सांसारिक और आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग में आने वाली बाधाएं को नष्ट कर देते हैं। जब प्रायश्चित करता है आने वाले नेक्स्ट जन्म में, और इसको भोगना नहीं पड़ता है। पाप का प्रायश्चित लेने से व्यक्ति में ही नहीं अपितु उसके साथ रहने वाले लोगों में भी संतुष्टि की भावना उत्पन्न हो जाती है। किसी के साथ अन्याय करने की चूक पर जब व्यक्ति द्वारा पाप का प्रायश्चित लिया जाता है, तब यह देखकर उस पीड़ित व्यक्ति के मन में उस अपराधी व्यक्ति के प्रति जो घृणा है वो भी घट जाता है। फिर परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं, पाप कितना प्रकार की है? दो प्रकार की, एक ही है अनजान, दूसरा है जानबूझकर। फिर परीक्षित महाराज पूछते हैं, अनजाने पाप को कैसा नष्ट करोगे? इसके लिए प्रायश्चित क्या है? क्यों? अनजाने में बहुत सारा पाप होता है, हमें गृहस्थ जीवन में घर गृहस्थ करते हैं उसमें प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ अनजान तो बहुत सारे पाप होता है। काल आप लोग सुन चुके हैं, चलने में कितना कीड़ा मर जाता है, झाड़ू देने में कितना कीड़ा मर जाता है। फिर घर में तो ये नित्य करना है, चलना फिरना तो हमें करना पड़ेगा, झाड़ू लगाना तो पड़ेगा, घर पे कुकिंग तो करना पड़ेगा, ये तो। लेकिन उसके लिए इसका प्रायश्चित क्या है? ये जो अज्ञानवशत पाप हो जाता है उसके लिए प्रायश्चित कहते हैं पंचयज्ञ करना है। पंचयज्ञ, पांच प्रकार के यज्ञ करना है। यज्ञ करना मतलब ऐसा नहीं 10-20 किलो घी ला के और पंडित लोग को बुला के और हवन करना और मंत्र पाठ करना, यह पंचयज्ञ के नहीं, ये दूसरा। ये पंचयज्ञ गरुड़ पुराण में बताते हैं, पांच प्रकार के यज्ञ प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक दिन करना चाहिए। ये अनजाने जो कोई पाप हुआ उसके लिए वो प्रायश्चित है। पहला यज्ञ है पहला यज्ञ वही है, घर पे जो भी कुछ बनाते हो, दाल रोटी, पहला रोटी गाय को खिलाना, पहला यज्ञ है, पहला रोटी गाय को खिलाना। दूसरा यज्ञ है चिंटी को, प्रत्येक दिन चिंटी 10 ग्राम आटा किसी भी पेड़ का नीचे हो, किसी भी रास्ता में हो, डाल देने का। ये दूसरा प्रकार यज्ञ। तीसरा प्रकार यज्ञ है पक्षी को खाना खिलाना, ये तीसरा प्रकार यज्ञ है। चौथा प्रकार यज्ञ है आटे का गोला बना के, आटे का गोला बना के जमुना में डालना, मतलब जमुना तो सभी जगह पे नहीं है लेकिन तालाब में डालना मछली खाने के लिए। और पांच प्रकार यज्ञ है भोजन बनाने का, पहले जो भोजन बन जाता है तो वह रोटी में घी लगा के अग्नि को समर्पित करना। ये गृहस्थ जीवन के लिए पांच प्रकार यज्ञ है। जो पांच प्रकार यज्ञ करने मात्र से अनजाने जीवन में, अनजान में जो कोई पाप हुआ ये प्रायश्चित हो जाएगा, ये पाप का भागीदार बनना नहीं पड़ेगा। इसलिए कहते हैं एते द्विजा तय सुधा व्रतई भा आविष्कृत ही नश अनाविष्कृत पापास्तु मंत्रे हमेशा शोधयत। प्रकट पाप की शांति के लिए द्विजों को पूर्वक चंद्रायण व्रत करना पड़ता है। जब तक आपको जानबूझकर कोई पाप किया इसके लिए चंद्रायण व्रत करना पड़ता है तब जाके वो पाप नष्ट होगा। कोई जानबूझकर कोई पाप करता है, गरुड़ पुराण में कहते हैं कि जगह पे कभी कभी भक्त का अंदर कि बाहर का कर्मी लोग का मन में काम वासना प्रकट होता है, काम वासना प्रकट होने का नाते कभी अपना गुरु का जो पत्नी है उसका साथ बाई चांस संभोग हुआ है उसके लिए प्रायश्चित किया है, उसके लिए प्रायश्चित है तप्त लोहा को गले मिलना है, उसके लिए प्रायश्चित हो सकता है, उसके लिए वो प्रायश्चित है। बहुत सारा दिया गया प्रायश्चित के बारे में, लेकिन एक ही पतिव्रता नारी के लिए क्या प्रायश्चित है? पतिव्रता नारी के लिए प्रायश्चित यही है अपना पति का बात का ऊपर चलना, पति जो दिशा में चलता है उसी दिशा में चलना चाहिए, वो उसके लिए प्रायश्चित है। कभी भी दूसरा पति को नहीं देख सकता है, कभी भी दूसरा का स्पर्श नहीं कर सकता है, और इसी जन्म में नहीं आरा जन्म तक उसको ये पुण्य मिलेगा। पतिव्रता नारी के लिए बता गया है। क्यों बता गया? जब दशरथ का पुत्र भगवान राम, राम का पत्नी माता सीता, सीता को रावण ने चोरी किया तो बोले कि नहीं, माता सीता कभी भी स्पर्श किए, कभी इसको मोड़ कर देखे भी, ये पतिव्रता नारी के लिए और इसके लिए प्रायश्चित है। लेकिन ये रावण का लंका राज्य को नष्ट कर दिया पतिव्रता नारी की, ये पतिव्रता नारी का कितना पावर होता है ये जानना चाहिए। तो वह प्रकट पापी पाप की शक्ति के लिए द्विजों के पूर्वक चंद्रायण आदि व्रत करना चाहिए, और गुप्त पाप की शांति के लिए मंत्र का पाठ और होम यज्ञ आदि करना चाहिए। कभी कभी सोचते हैं हमें गुप्त रीति में कुछ कर लें तो उसके लिए मंत्र पाठ करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलिजुग का पाप का युग कहा गया कि अधर्म युग कहा गया। हमें जितना चाहते हैं पाप से बचने के लिए फिर भी नहीं बच सकते, इसलिए प्रभुपाद यहां पे मेंशन करते हैं ना, हमें नहीं चाहते हुए फिर भी पाप हो जाता है, ये कलिजुग है। हमें जानने का बाद नहीं करना, ये आपका ऊपर डिपेंड है। आप जानते हो, भक्त होकर फिर भी बुरा नहीं मान, एक ही शब्द आपको बताना चाहता हूं, ये भक्त समाज के लिए। मेरे को ये कोई कोई बाहर का लोग भी प्रश्न इसी प्रकार के पूछ देते हैं, इसलिए बताता हूं। हमें वृंदावन में रह रहे हैं, वृंदावन के लिए बताता हूं, ये वृंदावन का महत्व जानो पहले। भक्त समाज के लिए बहुत हानिकारक है। आप देखेंगे कर्मी जगत में जितना तलाक नहीं, अभी भक्त समाज में ज्यादा तलाक हो चुका है। कितने आपको इस महसूस होता है कि नहीं, आप लोग को सोचो पहले। भक्त लोग समाज के लिए, भक्त का समाज के लिए, क्योंकि भक्ति का बारे में जानता है, गुरु से शिक्षा लिया, शिक्षा गुरु से शिक्षा लिया, शास्त्र पढ़ा, गीता पढ़ा, भागवत पढ़ा, कितने पुराण भी पढ़ाई किया, फिर बहुत अच्छा। ये चीज अभी चर्चा नहीं का विषय नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही ब्रीफ देने के लिए थोड़ा। अरे वृंदावन धाम है, धाम का दृष्टि से आप पहले देखो, पहले धाम का दृष्टि। मैंने जैसा बताया, शास्त्र का प्रति रुचि होगा, कथा सुनने में रुचि तब आओगा। करोड़ जन्म पुण्य, करोड़ जन्म का पुण्य जब इकट्ठा होता है, श्रद्धा नहीं है हमारा शास्त्र का प्रति, रुचि नहीं है शास्त्र पढ़ने में, जब शास्त्र प्रति रुचि आ जाएगा, आपको आगे पीछे कुछ भी नहीं देखोगे, सिर्फ भगवान ही नाम चिंतन करते रहोगे, मेरा वो कहां जाना नहीं। तब यह कलियुग है, कलियुग अधर्म का युग कहा गया है। और पाप कब करता है व्यक्ति, कब पाप करता है, जब अपने स्वरूप विस्मृत होकर जीव देहात्म बुद्धि प्रबल होता है, तब व्यक्ति नाना प्रकार की बिना द्विधा से पाप करना बैठता है। जब अपना स्वरूप से विस्मृत हो जाता है, अपना स्वरूप के बारे में पहले जानना चाहिए, जब जान लेता है फिर तब वो पाप करने में मन नहीं जाता है। लेकिन देहात्म बुद्धि में जब रहता है, देहात्म बुद्धि प्रबल होता है, तब जाकर व्यक्ति पाप करना चालू करता है। इसलिए कहते हैं, जब तक हृदय पाप से मलिन रहता है, तब तक शास्त्र में सत्य बुद्धि नहीं होती, शास्त्र के वचन सत्य प्रतीत नहीं होते हैं, और ना ही श्री गुरुदेव में भी सद्बुद्धि उत्पन्न नहीं होती है। क्या गुरुदेव का वाणी जो है वो झूठ है? गुरु का प्रति श्रद्धा भी नहीं है, गुरु का वाणी का ऊपर सद्बुद्धि नहीं हो रहा है, तो ये प्रमाण दिया जाता है। शास्त्र संपूर्ण प्रमाण देकर बताता है, शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलता है, ना शास्त्र में कोई जगह पे लिखा है ये झूठ है, प्रमाण देकर बता गया। गीता तो भगवान का मुखोनिष्ठ वाणी, और भागवत तो स्वयं बांकमय स्वरूप है भागवत। और वो पाप किससे करता है, कहते हैं भागवत के श्लोक जा चुका है 6:1-7 में, कहते हैं कुतस्य कुर्जन मन उक्ति पाणी भी, मन द्वारा, वाणी द्वारा और शरीर द्वारा, ये तीन चीज द्वारा पाप होता है। श्रील प्रभुपाद अमेरिका में इसका ऊपर लेक्चर दे रहे थे, अमेरिका में प्रभुपाद को कोई पूछा, बोले मन से कैसा पाप होता है, बोले वाणी से कैसा पाप होता है, हाँ काय से पाप होता है हमको मालूम है, विदेशी लोग पूछे, बोले काय से पाप, जब शारीरिक कुछ काम होता है तब इसको, प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया। क्या एग्जाम्पल दिया, कोई व्यक्ति किसको मारना चाहता है, सिर्फ सोचा मैं इसी व्यक्ति को मर्डर करना है, मन में आ गया पाप, मर्डर करना है, और फिर उसको जब उस व्यक्ति सामना सामने आता है, बोलना भी चालू करता है, गाली देना चालू करता है, वाणी से हो गया पाप। और जब तैयार होता है सामना सामने अस्त्र लेके, हो गया शारीरिक पाप, काय द्वारा, मन द्वारा, वाणी द्वारा। चलो प्रभुपद अमेरिका लोग को इसी प्रकार समझाया। इस प्रकार मन वाक्य और काय द्वारा यथाविधि के पाप का प्रायश्चित नहीं करना करता तब तक बहुत ही दंड मिलता है। इसके लिए प्रायश्चित जब तक नहीं करेगा तब तक उसको बहुत ज्यादा से ज्यादा दंड दिया जाएगा। और प्रायश्चित के बारे में भक्ति विनोद ठाकुर का भाषा में तीन प्रकार की है, तीन प्रकार की प्रायश्चित है। पहला प्रायश्चित है कर्म प्रायश्चित, दूसरा है ज्ञान प्रायश्चित, तीसरा है भक्ति प्रायश्चित। तब पहला प्रायश्चित क्या है? कर्म प्रायश्चित। इसके प्रायश्चित कैसा करना है? चंद्रायण प्रभृति कर्म प्रायश्चित द्वारा पाप प्रशमित होता है, किंतु पाप का बीज जो कि वासना पूर्ववत रहता है सभी के लिए कृष्ण स्मृति चाहिए। प्रायश्चित कर देता है, प्रायश्चित करने का बाद है, उसका बीज रह जाता है, उसका बीज रह जाता है। ये बीज को उखाड़ कर फेंकने के लिए सिर्फ भागवत श्रवण। इसलिए कहते हैं सुनताम शो कथा कृष्ण पुण्य सर्वण कीर्तन हृदय अंत्यस्त अभद्राणी विधुनाति श्रुत सताम। सुनताम शो कथा, भगवान स्वयं कह रहे, भागवत में पूरा वर्णन है। कृष्ण श्रवण कीर्तन, कृष्ण के बारे में जानना है, कृष्ण के श्रवण में आना है। हृदय अंत्यस्त अभद्राणी, हृदय का अंदर जितने कलमशता है, विधुनोति, विधुनोति का अर्थ है विशेष प्रकार के से भगवान धुलाते हैं, विशेष प्रकार के। हम तो कभी कभी बर्तन सफाई करते हैं उसमें भी थोड़ा बहुत रह जाता है, भगवान यहां पे प्रमाण देकर बताते हैं विद्युनोति श्रुत स्तम। और भगवान तो श्रुत है, इससे बढ़कर कोई मित्र संसार में नहीं हो सकता है। इसलिए कहते हैं ना श्रुत सर्वभूतानम ज्ञान तो माम शांति मुच्छति। श्रुत बन के और विधुनोति धुलाते हैं। हमें प्रत्येक दिन ही प्रार्थना करते हैं नष्ट प्रायेषु अपद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, भागवते उत्तम श्लोके भक्तिरिभवति नैष्टिकी। निष्ठापूर्वक जो भागवत सुनते हैं, निष्ठापूर्वक जो भागवत पढ़ते हैं। भागवत सुनने के लिए भी स्वयं शिवजी शिवलोक से आ गए थे, इसके बारे में कभी चर्चा होगा तो बताऊंगा। स्वयं शिवजी प्रत्येक दिन भागवत की दसम स्कंद की 60 नंबर चैप्टर को हर दिन सुनते थे, प्रत्येक दिन। और जो व्यक्ति पढ़ता था सुनाता था तब तो वहीं पे क्या बोलते थे, मार्क दे देता था, वहीं पे मार्क देकर चला जाता था। फिर दूसरा दिन आता था पढ़ने के लिए और जहां के वहीं पे मार्क दिया गया, मतलब शिवजी को वही चीज सुनना चाहिए था, कभी आगे पलटा नहीं पड़ा, बड़ा नहीं। हर दिन एक ही चैप्टर को सुनना चाहते थे। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। अभद्र मतलब क्या है? पाप कलमशता। प्रत्येक दिन हम जब भागवत सुनते हैं पढ़ते हैं नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, भागवत उत्तम श्लोक है, भागवत में श्लोक में ऐसा है। और भागवत ऐसा नहीं कि 7 दिन में कथा खत्म कर दे। बहुत सारे लोग होते हैं 7 दिन के अंदर, आप लोग हिसाब कीजिए, प्रभुपाद की जगह में मेंशन किया है भागवत में कितना श्लोक है, कितना श्लोक है? 18 श्लोक है। 18 श्लोक नहीं, 18,000 श्लोक है, 18,000 श्लोक है। 18,000 श्लोक को प्रभुपाद कहते थे एक ही श्लोक की व्याख्या एक महीना लगता है, एक ही श्लोक का व्याख्या एक महीना लगता है। तब 18,000 श्लोक को व्याख्या करने के लिए कितना दिन लगेगा? 18,000 महीना मतलब तो हिसाब करो भाई, कितना दिन होता है। और 7 दिन का अंदर हमें बहुत बड़े बड़े कथा बताइए। 18,000 श्लोक थोड़ा हिसाब कीजिए, कितना साल होता है, थोड़ा तो हिसाब करो, कैलकुलेटर में बताइए कितना होता है। इतने हजार साल तक हमको लगता है भागवत सुनने के लिए और हमें 7 दिन के अंदर कथा खत्म कर देते हैं। एक ही श्लोक प्रभु जी हिसाब कर दिया, एक ही श्लोक प्रत्येक दिन सुनेगा तो कितना साल लग रहा है? 50 साल। हाँ तो फिर, और प्रभुपद मेंशन किया एक ही श्लोक का ऊपर एक महीना लगता था। एक एक शब्द बहुत रुचिकर है, एक ही शब्द के ऊपर पूरा व्याख्या किया जाता है। भागवत का जो शब्द है ना ये क्या है मालूम है? कहते हैं ना, निगम कल्पतरु फलम गणितम सुख मुखात मृतदर्भ समझुतम पीबतम भागवतम रसम आलय। रस है, ये जूस है, ये जूस लेकिन हमें मुख से पीना नहीं, कान से पीना है, लेकिन हमारा कान में तो इतना मैला जमा है ना, वो जूस जाता भी नहीं। तब चंद्रायण प्रभृति कर्म प्रायश्चित द्वारा पाप प्रशमित होता है, किंतु पाप का बीज पड़ा रहता है। फिर इसका माध्यम से दूसरा जो ज्ञान प्रायश्चित, अनुताप कार्य द्वारा ज्ञान प्रायश्चित, अनुतप्त करना है, और ज्ञान प्रायश्चित है पाप के वासना नष्ट होता है, किंतु भक्ति के व्यतीत अविद्या नष्ट नहीं होता है, भक्ति से ही उसका बीज नष्ट होगा। सभी में दिया गया भक्ति, पहला कर्म प्रायश्चित, दूसरा हो गया ज्ञान प्रायश्चित, तीसरा है भक्ति प्रायश्चित, कृष्णानुस्मरण कार्य ही भक्ति प्रायश्चित, अतः भक्ति ही भक्ति प्रायश्चित, भक्तों लोग का प्रायश्चित का प्रयास करने का प्रयोजन नहीं है, यहां पे काट दिया। जब व्यक्ति भगवान का स्मरण करेगा, भगवान का चिंतन करेगा, भगवान का नाम रटेगा, तब उसको प्रायश्चित करने का प्रयोजन नहीं है, यहीं पे पूरा काट दिया। कभी कभी तो हम लोग पाप करने में आगे पीछे थोड़ा देखते हैं, कम से कम भक्ति लाइन में आने का बाद, लेकिन हम तो पहले बहुत सारा चीज करते थे, सब करते थे, ड्रिंक करते थे, कोई मछली खाते थे, कोई क्या नहीं किया। तब चैतन्य महाप्रभु चरितामृत में कहते हैं भक्त के लिए, भगवत भक्ति ही प्रकृष्ट प्रायश्चित है और भक्त ही प्रकृति में निष्पाप, इसके लिए चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, विधि धर्म छड़ी भजे कृष्ण रचर निषिध पापा चरे तर कभू नए मन। विधि धर्म छाड़ी भजे कृष्ण चरण, संपूर्ण विधि पूर्व के जो धर्म व्रत विधि है उसको छोड़ के कृष्ण का चरण में आश्रय लिया, और निषिध पापा चरे तर कभू नए मन, जो निषिध है, जो अविद्या है और जो पाप है, हाँ पापाचार, और उसका मन नहीं जाता वो करने के लिए। अज्ञाने हय यदि पाप उपस्थित कृष्ण तारे सुधि करे ना कराय प्रायश्चित। अज्ञाने हय यदि पाप उपस्थिति, अज्ञान वशत कभी पाप हो गया तब कृष्ण तारे सुधि करे, कृष्ण ने उसको सुधि कर देंगे, ना कराए प्रायश्चित, उसके लिए प्रायश्चित का आवश्यक नहीं है, ये क्लियर कर दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा नहीं कि हम हरे कृष्ण महामंत्र लेते रहें और पाप करते रहें, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं ना, नाम बोले पाप बुद्धि, यह हमारा अपराध है ना, से अपराध तो बहुत परेशानी है। पाप तो पाप के लिए आप प्रायश्चित कर सकते हैं, अपराध के लिए कौन सा प्रायश्चित है? कोई जगह पे लिखा है, कोई शास्त्र में लिखा है अपराध के लिए प्रायश्चित है? नहीं है, पाप के लिए प्रायश्चित है, इसलिए बहुत सावधान का साथ वृंदावन में एक भजन है लास्ट में, बहुत अच्छा भजन है, थोड़ा से गाते हैं ये प्रायश्चित करने का। हामी अति पामर दुर्जन, हामी अति पामर दुर्जन, की करीबु हाय हाय प्रकृतिर दास ताए, की करीनु हाय हाय प्रकृतिर दास ताए, काटाई नो अमूल्य जीवन, काटाई लो अमूल्य जीवन, काटाई नो अमूल्य जीवन। आमी अति पामर दुर्जन, की करीबू हाय है प्रकृतिर दासताय, हम तो माया का दास बन चुके हैं, प्रकृति का दास मतलब माया का दास बन चुके हैं। काटाइनु अमूल्य जीवन, हमारा जो अमूल्य जीवन है कैसा कटाऊं? प्रकृति का दास बन चुके हैं, माया का दास बन चुके हैं, संसार का दास बन चुके हैं, शरीर का दास बन चुके हैं। इसलिए कहते हैं आमी अति पामर दुर्जन। कत दिन गर्भ बसे काटाइनु अनायसे, बाल्य गेल बाल धर्म बसे। केते दिनों गर्भ बसे, कितना दिन गर्भ का अंदर रहना पड़ा, काटाइनु अनायसे, बाल्य गेल बाल धर्म बसे। और जब जन्म लिया, जन्म लेने का बाद है बाल धर्म, बचपना, खेलना कूदना यही काम चला। ग्राम्य धर्मे नज एज उबन, मिछ दिनु विसर्जन, वृद्ध काल एल अवशेष। ग्राम्य धर्मे ए जौवन, गांव का जो धर्म होता है ना, इसी धर्म से हमारा जौवन बीत गया। ये करना है, वो करना है, भाई बाप मर गया तो उसका लिए 13 दिन उड़ीसा में होता है, 13 दिन तक आमिष नहीं खाएंगे, भाई जन से अपना परिवार में कोई मरा तो, ये हिसाब होता है उड़ीसा का हिसाब ये। इसके बाद फिर 13 दिन नहीं, जब तक बाई चांस आमिष नहीं हुआ बाप का उद्धार नहीं होगा, 13वां दिन आमिष होना ही होना है। इसलिए कहते हैं ग्राम्य धर्म ए जौवन, मिछे दिनु विसर्जन, वृद्ध काले एल अवशेष। फिर बचपन, बचपन से जौवन, जौवन का बाद फिर वृद्ध काल आ जाएगा। विषय नाही का सुख भोग शक्ति सबई मुख, अंतवंत शरीर शक्त। विषय के नहीं का सुख, विषय में सुख नहीं है, भोग शक्ति सबई मुख, सभी का मुख में क्या है, भोग करना है, सभी का इच्छा क्या है, भोग करना है। अंतवंत शरीर अशक्त, और वृद्ध हो जाने का बात है शरीर में शक्ति नहीं है, वृद्ध उम्र में शक्ति नहीं होता है, फिर भी भोग करने का इच्छा रहती है। जीवन यंत्रणा मय, मरण ते सदा भय, बल किसे हय अनुरक्त। जीवन यंत्रणामय है और मरण ते सदा भय, अब मृत्यु को सभी को भय है, कोई चाहता है भाई जैसे मृत्यु सामने में आ जाए, लेकिन परीक्षित महाराज को मृत्यु बता गया 7 दिन के अंदर मृत्यु हो, लेकिन उसी टाइम पे परीक्षित महाराज रोए नहीं, रोए रहे थे क्या? उनको जब अभिशाप मिल गया तुम्हारा 7 दिन के अंदर सर्प दंशन करेगा, तो वो रो रहे थे नहीं? भाई जन हमारा सामने कोई बोल दे तुम्हारा हार्ट अटैक आने वाले है, हम तो पहले डॉक्टर को जाकर पहले नैथ हॉस्पिटल जाएंगे पहले चेकअप। और मरणते सदा भय, बल किसे हय अनुरक्त। भोग्य वस्तु भोग शक्ति, ताते छिल अनुरक्ति, जे पर्यंत छिल देह बल। भोग वस्तु भोग शक्ति, भोग करने के लिए और भोग वस्तु से जो शक्ति है, ताते छिल अनुरक्ति, ता प्रति हमें कितने आसक्त थे हमें जानते हैं ना। एग्जाम्पल देते हैं, एक रुपया कमाने के लिए कि पैसा के लिए हमें कितना परिश्रम करना पड़ता है, पैसा आएगा कैसा उसके लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है, फिर पैसा आ गया परिश्रम किया, फिर परिश्रम का टाइम पे हमें कितना पाप किया, फिर उसको भोगना कैसा है, कितना चिंता होता है हमारा। इसी प्रकार धन नहीं है चिंता है, धन है फिर भी चिंता है, होता है नहीं होता है, नहीं है चिंता है कैसा कमाना है, और बाई चांस हो गया भाई GST लग जाएगा ना, उसके लिए भी चिंता है। भोग्य वस्तु भोग शक्ति, ताते छिल अनुरक्ति, जे पर्यंत छिल देह बल। शरीर में जब तक बल रहता है इसको भोगने के लिए इच्छा रहती है। समस्त विगत हैल किलया था कि बल, एबे चित सदाई चंचल। समस्त विगत हैल कि लैया था कि बल, एबे चित सदाई चंचल। फिर भी वृद्ध उम्र में मन फिर भी चंचल होता है, वृद्ध उम्र में। सामर्थ्यता किते काय, हरिना भजिनु हाय, आसन काल ते की बकरी। सामर्थ्य था किते काय, जब समर्थ था ये शरीर में, हरिना भजिनु हाय, धिक मेरा जीवन, जब शरीर में बल था तब मैं भजन नहीं किया। तब प्रहलाद महाराज करते हैं, जब बल रहता है तो भजन करो, भजन तो करो। ये जो होली नेश राधा गोविंद महाराज बोलते थे 40 साल तक भजन करो, 40 साल के बाद तो माला और घटते जाएगा। 40 साल तक तो कम से कम करो, 40 के बाद बीमारा आना चालू हो जाएगा। वैष्णव महाराज के साथ एक बार बात हुआ था, महाराज आपका बहुत शुगर है ये है, मैं पूछा, मतलब मेरा शुगर नहीं है, मैं बहुत सारा मिठाई खाता हूँ। महाराज सीधा बोले, बोले 40 साल के बाद देखना मेरा को बताना फिर। बोला अच्छा देखता हूँ कैसा होता है। 40 साल के बाद धीरे धीरे बीमार आना चालू करता है। इसलिए कहते सामर्थ्य थाकिते काय हरिना भजिनु हाय, जब शरीर में शक्ति था उसी टाइम में भजन नहीं किया। आसन कालते किवा करी, और वो आसन लगाकर हमें बैठे है, मरना नहीं चाहते है, मरवा दिया जाता है। धिक मोर ये जीवन नाश दिनु नित्य धने, मित्र छाड़ी भजी लामरी। जो हमारा रियल मित्र है, जो प्रभु, और उसका साधना नहीं किया, मित्र छाड़ी भजी लामरी, प्रभु का सेवा में हमें नहीं जोड़ा, प्रभु का भजन नहीं किया, हमें कितने बड़ा पापी बन चुके हैं। इसलिए आमी अति पामर दुर्जन, अपना को कितना पापी मानना चाहिए जब तक हमें भजन नहीं करते, जब तक भजन नहीं करते। इसलिए सभी को अनुरोध है भजन करें, भजन का माध्यम से फिर भी आप दूसरा को भी शिक्षा दें, दूसरा को यही पाप से विमुक्त हो जाए, पाप से दूर रहें, और शास्त्र पढ़ें, शास्त्र को समझे, समझ के अपना जीवन में उतारें। बहुत सारा चीज प्रभुपाद ने मेंशन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पे चैतन्य चरितमृत फिर भी कहा जाता है, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी बेतन मोरे देह प्रेम धन। प्रेम धन बिना, प्रेम धन क्या है, भगवान का भजन, बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, ये जीवन दरिद्र है, और दास करी बेतन मोरे, प्रभु मैं आपका दास हूं, अब मेरा वेतन क्या है, ये आपका प्रेम धन, आपका मेरा वेतन क्या है, मैं जब दास बनकर सेवा करूंगा तब मेरा वेतन क्या होगा, प्रेम धन। और प्रेम धन से हमें दूर जा रहा है व्यर्थ दरिद्र जीवन, जो प्रेम धन को प्राप्त नहीं करना चाहता है उसका जीवन कैसा है, दरिद्र है। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, श्री वृंदावन धाम की, श्री गौर निताय की, कृष्ण बलराम की, राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा की, जगन्नाथ बलदेव सुद्रा महारानी की, संवेत गौर भक्त वृंदे की, जय जय श्री राधे श्याम।